ओम शांति। आज 12 जुलाई 2023 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम्हें पवित्र जीव आत्मा बनना। क्या बनना है? आज तक तो आत्मा कहते थे, आज क्या चक्ता होगा? आत्मा पवित्र बनेगी तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें पवित्र जीव आत्मा बनना है। इस समय कोई पवित्र जीव आत्मा नहीं, पूरी दुनिया में सब जीव आत्माएं क्या हैं? अपवित्र। शरीर भी पतित, आत्मा भी। इसलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। कोई भी, क्योंकि आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित है, तो कोई अपने को महात्मा भी कहला नहीं सकते। अरे पतित है तो वो अपने आप को महात्मा कहला नहीं सकते। प्रश्न, सतयुगी राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? सतयुग की राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर, जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर वन जाते, जो बाबा की श्रीमत पर याद की रेस में नंबर पर, परमात्मा को याद करने में, बाबा की श्रीमत पर चलने में जो नंबर वन जाते हैं, उन्हें ही राजाई का इनाम मिलता है। तीखी रेस होगी तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा। रेस जो ना तीखी होगी, अपने आप को सुधारने में तेज होगे, तो उसका रजिस्टर में भी नाम अच्छा होगा और इनाम के अधिकारी बनेंगे। तुम बच्चे दूरादेशी बन बड़ी दूर की रेस करते हो, एक सेकंड में निशान तक, परम धाम तक पहुंच वापस लौट कर आते, वापस लौट कर आते हो। तुम्हारी बुद्धि में है, पहले हम मुक्ति में जाएंगे और फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। तुम्हारे जैसी रेस और कोई कर नहीं सकता। गीत, आखिर वे दिन आया आज। ओम शांति। ये कौन जानते हैं कि आखिर वे दिन आया आज? बच्चे जानते हैं, आखिर वे दिन आया आज जो हम बाप के सम्मुख हुए हैं, बाबा के हम सामने आए हैं। ये वो दिन आ गया, बाप से मिलन मनाने वाला दिन। आत्मा कहती है, इस शरीर द्वारा अभी तुम बैठे हो, अभी तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्माएं अभी परम पिता परम आत्मा के सम्मुख बैठे। ये बाबा मुरली चला रहे हैं तो बाबा के सामने सारे बैठे हैं, तो क्या है? परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठी। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी हम आत्माएं, यानी जीव की आत्माएं परम आत्मा से सम्मुख मिली थी। जब बाबा मुरली चलाते थे तो हिस्ट्री हॉल ही होता था, क्योंकि 69 से पहले की मुरलियां हैं और हिस्ट्री हॉल इससे तो छोटा है, इतना ही समझ लो सर, हिस्ट्री हॉल इससे बड़ा है थोड़ा बहुत, लगभग इसके पर इतने का ही होगा है ना, और थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो सकता है, उसमें दो ही दरवाजे हैं, इधर से घुसे इधर से घुसो और ऊपर चित्र लगे हुए हैं, जो भी वाला इतना ही लगा लो जो भी है। आप इसमें कितने जने बैठ सकते हैं? बस बीच बीच नहीं बैठ सकते, बीच बीच मतलब इतने लोग होते थे और उसमें वो गद्दी इधर रख दी, एक गद्दी इधर रख दी, बीच में गद्दी रख दी, फिर आगे जगह तो काफी गिर जाती है ना। मैं कहने का यह है कि इतने ही लोग आते थे, नहीं ये उस टाइम मुरली चली थी उस टाइम की बात है ना, उसके बाद कितने भाई बहन आ गए, नहीं तो 69 की बात है ना, जब 69 से 69 तक भी वही हिस्ट्री हॉल था, अभी शांति भवन भी नहीं था, कब हाँ साढ़े तीन, वो तो जब मधुबन वहां बैगरी पार्ट में वहां से जो आए ना उस टाइम ना, उसके बाद तो धीरे धीरे फिर बढ़ते गए, जैसे सेंटर खुलते गए, ये 350 तो वहां से पाकिस्तान से आए थे 1951 में, और उसके बाद फिर कोई गए कोई आए, वो चलता रहा खेल, परंतु यह है कि उसके बाद संख्या बढ़ना शुरू। परमात्मा से सम्मुख मिली थी, आत्मा कहती है मेरा ये शरीर है, शरीर नहीं कहेगा मेरी ये आत्मा है, आत्मा बोलेगी ये मेरा शरीर है, परंतु आत्मा नहीं है तो ये शरीर नहीं बोल सकता कि मेरी आत्मा गई या ये मेरी आत्मा है। हम आत्माओं का बाप आखिर आज आया, आखिर आज आया है, आना भी जरूर है। भक्ति के बाद ज्ञान देने लिए, ज्ञान से सदगति करने लिए आखिर आया है। ये सारी दुनिया नहीं जानती, ये सारी दुनिया नहीं जानती, सारी दुनिया के सम्मुख हो भी नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है, पहले तो आत्मा निश्चय करते हैं, फिर निश्चय करते हैं हमारा बाप फिर से आया हुआ है, हमारा बाप फिर से आया हुआ है। तुम समझते होंगे ऐसे सब निश्चय करते, ऐसे सब निश्चय करते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं है, ये ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है, घड़ी घड़ी भूल जाता है। हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा के सम्मुख है ये भूल जाते, हम आत्माएं हैं और हम परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं ये भूल जाते। ये तो दुनिया भी जानती है, पतित जीव आत्माओं को पावन बनाने परम पिता परम आत्मा आते हैं, जीव आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाने नहीं आती, कोई जीव आत्मा नहीं आती आत्माओं को पवित्र बनाने के लिए, सभी जीव आत्माएं हैं, परम पिता परम आत्मा एक ही है, उनको जीव नहीं कहेंगे, उनका शरीर है ही नहीं, उनको शरीर नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको कोई सूल सूक्ष्म शरीर नहीं है, उनका ना कोई स्थूल शरीर है जैसे हमारा है और ना ही उनका कोई सूक्ष्म शरीर है जैसा ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए कहा जाता है। ये बाप बैस समझाते हैं, तुम जो भी नामधारी देखते हो ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देखते हो, वे सूक्ष्म वतन में रहते हैं। ये चित्र तो दुनिया ने बनाए हैं, ऐसा चित्र तो कोई है ही नहीं, ऐसा कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर है ही नहीं। अब वो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, लोगों को लगेगा कि सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर बैठे हैं, क्या करेंगे वहां, क्या कर रहे हैं सूक्ष्म वतन में? नहीं है ही नहीं, ऐसा कोई ब्रह्मा विष्णु या शंकर वही सूक्ष्म वतन में नहीं, सिर्फ शिव बाबा का संकल्प था जो उसने सोचा, बाकी कोई नहीं। उतनी देर था जितनी देर तक शिव बाबा का संकल्प, जैसे हमने सपना देखा वो आकार उतनी देर तक था जितनी देर तक हमने सपना देखा, सपना खत्म तो आकार भी खत्म। ये तो है नहीं कि ऊपर आकार बन के रखा हुआ है। चित्र भी खत्म, वे भी सूक्ष्म जीव आत्मा ठहरे, जो सूक्ष्म आकार दिखाई दे रहा है वे भी क्या ठहरे, सूक्ष्म जीव आत्मा, सूक्ष्म शरीर और आत्मा। ये बड़ी समझने की बातें, क्योंकि यहां बाबा विस्तार नहीं करना चाहता, वैसे मतलब ब्रह्मा बाबा शिव बाबा और विष्णु और शंकर ये तीन जो है केवल और केवल बताने के लिए, क्योंकि पहली बार बाबा ने दादी प्रकाश मणि से पूछा कि कुमारिका बताओ बाबा को कितने मुर्गी बचे, तीन ही बताए। दादी प्रकाश मणि ने कहा तीन, जो जो रटा हुआ है वही बताएंगे जो उनको पता है। बोला ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा, ये तो एक आत्मा हुई, तो दो आत्मा कर देता है। तो कहने मतलब एक बोला ब्रह्मा या विष्णु को या शंकर, उस मुरली में बाबा ने दो आत्माएं कर, एक को उड़ा दिया, मर्जी है ना बाबा, धीरे धीरे उड़ाता है ना। फिर शंकर का भी सूक्ष्म वतन सूक्ष्म आकार है, वो कोई स्थूल वतन में तो आता नहीं है, ब्रह्मा भी कोई स्थूल वतन में आता नहीं है और विष्णु भी कोई सूक्ष्म वतन में नहीं आता। यहां तो है स्थूल वतन में प्रजा पिता ब्रह्मा, और ब्रह्मा जो है वो सूक्ष्म वतन वासी, ब्रह्मा सूक्ष्म वतन वासी है और ये प्रजापिता ब्रह्मा ये स्थूल वतन वासी। तो जब ये स्थूल वतन वाला सूक्ष्म बनता है, स्थूल शरीर को छोड़ता है, तो सूक्ष्म ब्रह्मा बनता है। फिर वही जो है शंकर का पार्ट प्ले करता है बिना शरीर के, फिर उसके बाद स्थूल शरीर में कृष्ण के जन्म लेता है, तो ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, वासुदेव कृष्ण बनता है। कहते हैं फलाना महात्मा है, परंतु पतित दुनिया में महात्मा आ कहां से सकते हैं? वर्णन कर दिया, बात सारी वर्णन पर है ना, भाई रामायण लिख दी, कृष्ण लीला लिख दी, कृष्ण का वर्णन कर दिया, जिसके कारण वो जो लिखा हुआ है उसी पर चलते हैं जो शास्त्रों में लिख दिया। ये रामायण और महाभारत आज से 2000 साल पहले लिखे गए, फिर गुरुओं के पास पढ़ाने के लिए यही थे और कोई किताब ही नहीं थी। रामायण पढ़ाते थे, महाभारत पढ़ाते थे, तो जो बच्चे पढ़ेंगे वही आगे सुनाएंगे। हुए ही नहीं, देखेंगे तब। कृष्ण जैसा उन्होंने वर्णन किया है ऐसा कोई कृष्ण हुआ ही नहीं, ऐसा कोई राम हुआ ही नहीं। क्योंकि 2000 साल पहले रामायण और महाभारत का वर्णन हुआ, इससे पहले कहीं राम और कृष्ण का वर्णन नहीं है। किसी भी वेद में राम और कृष्ण का वर्णन नहीं। पहले वेद लिखे गए। जब वेद लिखे गए तो उसमें जो संस्कृत थी वो कोई नियम नहीं था उसका। और जैसे मैंने बोल दिया आपको समझ में आ गया, ठीक है, कहाँ सब्जेक्ट लगना है, कहाँ वर्ब लगना है, कहाँ ऑब्जेक्ट लगना है, कोई नियम नहीं था। बस मैंने कह दिया आपको समझ में आ गया, बस शब्द इकट्ठे हो गए, बात समझ लो। तो मतलब इस प्रकार से वो समझ लेते थे। अब जैसे मतलब मेरे को कोई चीज अच्छी लग रही है तो मैं अपने बच्चों को बताऊंगा ना भी ऐसे करो तो अच्छा रहता है, ऐसे उन्होंने बताए। काल्पनिक नहीं भाई, मतलब अनुभव से। भाई आपने कोई सब्जी बनाई, ऐसे बनाओ तो सब्जी अच्छी लगेगी, ये पौधे की सब्जी अच्छी है, इस पौधे में से ये चीज में प्राप्त होती है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से उन्होंने जो कुछ भी प्रकृति के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में, मतलब जो उनको जानकारी थी वो उन्होंने दे दिया, है नहीं। इन वनस्पतियों से क्या क्या मिलेगा, ये कौन सी बीमारी ठीक करेंगे, है नहीं। इस प्रकार से उन्होंने अपनी तरफ से जो अच्छी सलाह थी वो उन्होंने लिख दी, बस और कुछ नहीं है। हमारे जीवन में जीने के लिए हमें उन्होंने जो गाइड किया, रास्ता दिखाया, मार्गदर्शन किया वो है। फिर एक वेद के अंदर बहुत सारे ऋषि हैं। एक ऋषि ने 30-40-50 श्लोक लिख दिए, दूसरे ऋषि ने लिख लिए, तीसरे ने, चौथे ने, पांचवे ने, छठे ने, मैंने भी लिखा है उसी पर। आपने अपने तरीके से थोड़े घट बढ़ करके अपने तरीके से लिखा कि ये होता है, आपने अपने तरीके से लिख दिया, आपने अपने तरीके से लिख दिया, बात घुमा फिरा करके थोड़ा बदल करके, क्योंकि आपका अनुभव थोड़ा ज्यादा है, उनका कम है, उनका कुछ और है, उनका कुछ और है, तो हर एक ने अपने अनुभव से बताया। तो उन सब ऋषियों के उन श्लोकों को इकट्ठा कर तो एक ऋग्वेद बन गया। इसी प्रकार से अलग अलग ऋषि के श्लोकों को इकट्ठा करके एक किताब बना दी, उसका नाम ऋग्वेद रख दिया, उसका नाम यजुर्वेद रख दिया, सामवेद। ठीक, हमारे बुजुर्गों के पास ज्ञान कम है क्या, अनपढ़ों के पास क्या ज्ञान की कमी है क्या? गृहस्थ जीवन को अच्छा चला के गए जो कभी स्कूल नहीं पढ़ने गए थे, है ना। जो भी मतलब यहाँ से वेदों में हिसाब की तो कोई बात है ही नहीं, है ना। तो इस प्रकार से कहना मतलब यह है, वेदों में तो हमारे जीवन को कैसी उससे क्या फर्क पड़ता है, चुरा के क्या कर लेंगे, चुराने के बहन जी चुरा के अब गए ना, 500 साल पहले ही तो नहीं बहन जी जला दिया, जो भी किया बात सारी यहाँ आती है, उससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अब जो भी लिखे गए इन्होंने सारे जो इकट्ठे थे करके लिख दिया, आपने भी लिख दिया, उसने भी लिख दिया, उसने भी लिख दिया। अब ऋग्वेद कोई एक थोड़ा है, सैकड़ों हजारों ऋग्वेद लिखे हुए मिलते हैं, नहीं नहीं, हर एक ने कॉपी करके, जो स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ने गया उसकी कॉपियां मिलती हैं, वो लिखी हुई हैं, तो वो उन्होंने लिख दी है बस। अब एक जला दे तो क्या फर्क पड़ गया, दूसरे तो है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ कहने की बात है, अब उसको बड़ा चढ़ा कर कितना भी बोलते रहो कि जी खत्म हो गया, खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया, जो हमारे जीवन में ज्ञान है वो क्या खत्म हो सकता है। अब जो जो कुछ भी एक पढ़ के, उन्हीं को पढ़ करके ही तो सारे बता रहे हैं, चाहे वहां बताए तो यहां बताए। 500 साल पहले तक तो एकदम अनजान थे ना, जब समुद्री जहाज बने तब हम एक दूसरे के संपर्क में आए, और उसके बाद वो यहाँ आए, उनको कुछ अच्छा लगा होगा, ले गए, तो लेके कहाँ गए, इसी पृथ्वी पर तो है। ये नहीं है कि सिर्फ वेद हमारे भारत में लिखे गए तो विदेशों में कुछ नहीं था, वहां पर भी उस समय अरस्तु हुआ, सुकरात हुआ, जिस समय इधर वेद लिखे गए, ऐसे ही वहां पर भी अलग अलग विद्वान हुए, उन्होंने भी अपने तरीके से उनको सही रास्ते दिए, ऐसा नहीं है। जहां कोई सुप्रीम पावन हो ना सके, यहां कोई परम पवित्र हो ही नहीं सकता। हाँ, वे सुप्रीम बाप पावन बनाकर गए हैं, सतयुग आदि में देवी देवता थे, ये तो पवित्र आत्माएं थी, ये तो पवित्र आत्माएं थी, अभी पतित जीव आत्माएं। जब परमात्मा बना के गए तो वो पवित्र थे, परंतु अब ये सब कौन है, पतित जीव आत्माएं। पावन जीव आत्माएं भी थी बरोबर, सतयुग आदि से सृष्टि पर पवित्र जीव आत्माएं थी, उन्हों को महान आत्मा कहेंगे। बाप समझाते हैं, पतित दुनिया में कोई भी महान आत्मा हो नहीं सकते, सब पतित जीव आत्माएं हैं, पतित जीव आत्माएं जरूर औरों को भी पतित ही बनाएंगी। जो खुद पतित हैं तो वे औरों को क्या बनाएंगी, पतित ही बनाएंगी। वहां है पवित्र जीव आत्माएं, तो क्या करेंगी, ऐसे नहीं के पवित्र जीव आत्मा बनाएंगे, सतयुग में पवित्र जीव आत्माएं हैं, पर तो वे दूसरों को पवित्र जीव आत्माएं नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो है ही पवित्र जीव आत्माएं, वहां कोई पतित है ही नहीं जिसको पवित्र बनाए, कहते नहीं, वहां बनाने की बात ही नहीं रहती, क्योंकि वहां सब है ही पावन। इस समय सभी पवित्र जीव आत्माएं बनती, अभी बनती है सब, वहां तो है ही सब पावन, वहां है ही पावन, तो उनको पावन क्या करना, इतना पावन बनाने वाला कौन, बाप बैठ समझाते हैं, तुम जब देवी देवता थे तो पावन थे, यहां आकर पतित बने हो, ये है ही पाप आजीव आत्माओं की दुनिया। अक्षर बिल्कुल क्लियर समझाना है, पाप जीव आत्मा, क्योंकि आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित है, वहां फिर महात्मा अक्षर नहीं देते, वहां फिर महात्मा अक्षर नहीं देते, वहां तो है ही सब पवित्र, कहते ही हैं देवी देवता हैं, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। अभी कुछ दिन पहले आया था श्री श्री, किसके लिए, छे बाबा के लिए श्री श्री आया था, और श्री श्री किसके लिए आया था, लक्ष्मी के लिए आया था, श्री श्री नारायण के लिए भी आया था, क्यों आया था, एक सेकंड के लिए, बाप समान तो बनते हैं ना, तो बाप श्री श्री है तो लक्ष्मी भी श्री श्री, और नारायण भी श्री श्री बनते हैं और उसके बाद वो पतित होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उनके साथ क्या लगता है, एक श्री लगता है। शिव बाबा के साथ डबल श्री लगता है, शिव बाबा आत्मा है तो डबल श्री लगता है। उनके साथ डबल श्री लगाने के लिए क्या तर्क दिया था, लक्ष्मी नारायण क्यों डबल श्री है, क्यों कहा था, क्योंकि आत्मा भी पवित्र है और शरीर भी पवित्र, शरीर भी पवित्र है आत्मा भी पवित्र है, तो उसको कहा ये डबल श्री हैं, परंतु शरीर तो बहुत जल्दी पतित हो जाता है, धीरे धीरे आत्मा कमजोर हुई पतित। सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म जीव आत्माएं हैं और कोई संपूर्ण निर्विकार धर्म जीव आत्माएं, अहिंसा परमो धर्म जीव आत्माएं हैं। संपूर्ण निर्विकारी माना संपूर्ण पवित्र। तो बच्चों को समझाया जाता है सन्यासी पवित्र रहने के लिए पुरुषार्थी है, अच्छे सन्यासी पवित्र रहते हैं जिनको महात्मा कहा जाता है, पवित्र रहने लिए अलग अलग रहते हैं। सन्यासी पवित्र रहने के लिए क्या करते हैं, अलग जंगलों में जाके रहते हैं, परंतु वे तो है निवृत्ति मार्ग वाले, उनको भक्ति मार्ग में महात्मा कहेंगे। निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासियों को भक्ति मार्ग में महात्मा कहेंगे, ज्ञान मार्ग में नहीं। ज्ञान मार्ग में कोई घर बार छोड़कर जंगल में नहीं। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग गाए जाते हैं ना, आधा कलप सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है और फिर भक्ति की प्रारब्ध कहेंगे, फिर भक्ति की प्रारब्ध। ये है भक्ति मार्ग। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती है। अव्यभिचारी भक्ति का मतलब एक की भक्ति, बस एक को ही अपना इष्ट मानेंगे। आज तो क्या हो गया है, एक की जगह पर राम भी रख दिया, कृष्ण भी रख दिया, गणेश भी रख दिया, हनुमान भी रख दिया, जितनी जितनी रखी जा सके, जितने पीसे की खरीदी जा सके, कोई आके गिफ्ट कर दे सर रख दो वहीं पर, भाई भगवान जैसा भी है तो जरा रहम करना हमारे ऊपर, कृपा करना, हम सबको धूप बत्ती जला देते हैं बस। यह है भक्ति मार्ग। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती है, फिर अंत में तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति होती है। अभी व्यभिचारी भक्ति का अंत होना है, तब बाप आए हैं। बाप एक ही बार आकर ज्ञान से आधा कल्प के लिए तुम्हारी प्रारब्ध बनाते हैं। तुम नंबर वन पुरुषार्थ करते हो, कोई तो राजा रानी बनते हैं, कोई तो राजा रानी बनते हैं, कोई फिर प्रजा व दास दासी बन जाते हैं। क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। तुम आप दूरादेशी बुद्धि बनते हो। दूरदेशी बुद्धि को त्रिकालदर्शी कहा जाता है, जिन्होंने तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान है उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है। जिनको तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान है उनको क्या कहा जाता है? त्रिकालदर्शी। तुम अब तीनों लोकों को जानते हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, तीन लोक हुए ना। तुम अब दूरादेशी बन गए हो, तुम्हारी बुद्धि आदि से अंत तक जाती है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कमजोर होते हैं जो रेस में पीछे रह जाते हैं, रेस में पीछे रह जाते हैं, ये तो बड़ी दूरादेशी रेस है, ये तो बड़ी दूरादेशी दूर की सोचने वाली रेस है। आत्माओं की रेस कभी सुनी नहीं होगी, शरीरों की तो रेस होती है यहां से वहां तक भाग के जाना, आत्माओं की रेस कभी सुनी नहीं होगी। तुम आत्माएं जानती हो, हम स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट हैं, हमारी यह रेस है फलाने निशान तक पहुंचकर फिर लौटना है। हमारी रेस कहां तक है? हमने मंजिल तक पहुंचना है फिर वापस आ जाना है। वो रेस कहां तक है तुम्हारी भाई? तुम आत्माओं की ये बड़ी दूर की रेस है, बुद्धि जानती है हम वास्तव में वहां के रहने वाले, कहां के रहने वाले हैं? एक सेकंड में हम वहां पहुंच जाएंगे। कितनी देर में पहुंचोगे? ठीक है, एक सेकंड में आप कहां पहुंच जाएंगे? परम धाम। परम धाम माना परम अवस्था, परम धाम माना परम अवस्था, है नहीं? एक ही सेकंड में पहुंच जाएंगे सारे के सारे, इतनी दूर है। एकदम एक ही सेकंड में सारी की सारी आत्माएं परम अवस्था में। अब हमारी दौड़ लगी हुई है, अब हमारी दौड़ लगी चल रही है, रोजाना दौड़ चल रही है हमारी। कितना हम सुधरते जाएं, कितना हम हल्के होते जाएं, तो हम लास्ट में एक सेकंड में कहां पहुंच जाएंगे? परम। और एक ही सेकंड में वापिस आ जाएंगे। कितनी देर परम धाम में रहेंगे? नहीं भाई, ज्यादा से ज्यादा एक आत्मा 4999 साल परम धाम में रहती है, और कम से कम एक साल वहां जरूर रहती है। तो कृष्ण की आत्मा वहां एक साल रहेगी, वहां कोई आत्मा चाहे एक साल रहे चाहे 4999 साल रहे, बराबर है, बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एक साल सो के उठ के आ गया, कोई 4999 साल सो के उठ गया, अभी सोया था अभी उठ गया, उसके लिए तो कोई पता नहीं ना, जब जागे तब सवेरा है नहीं, जब तक जागेगा नहीं तो उसका सवेरा ही नहीं होगा, आएगा वो सत्व प्रदान होगा। इसलिए मतलब वो एक ऐसी सुप्त अवस्था है जहां हिलना डुलना खाना पीना कुछ भी, चाहे आत्मा 2000 साल बाद आए चाहे 200 साल बाद आए। हाँ जी, हाँ, उसके लिए जाएंगे मुक्ति में, वो है नहीं, मुक्ति में जाके आराम करेंगे, उनको क्या करना है? मांगना तो पड़ेगा फिर आकर के, जो रोल है जो अब रोल बजा रहे हैं वो रोल तो उन्होंने बजाना ही बजाना है। हाँ जी, हाँ, उनको 2500 साल तो आराम से घर बैठे रहेंगे ना। मैक्सिमम कहते हैं भाई जी बस हमें कोई फार्मूला बता दो, 4999 बैठे रहे आराम से परमदार मैक्सिमम यही पूछते हैं। हम असल परम धाम के निवासी हैं, यथार्थ रीति बुद्धि जानती है, हम परम धाम जाएंगे फिर आएंगे, जैसे रेस में निशान तक पहुंचकर फिर लौटते हैं, निशान तक जाएंगे फिर लौटकर आ जाएंगे, हम भी बाबा के पास जाएंगे फिर वापस आएंगे। अब आत्माएं रेस सीख रही हैं, अब आत्माएं क्या कर रही हैं, रेस सीख रही हैं। तुम सबको कहते हो मन मना भव, बुद्धि का योग अपने बाप और परम धाम से रखो, बुद्धि का योग अपने बाप और परम धाम से, मतलब बुद्धि में रहे, जैसे हमें घर जाना होता है, ड्यूटी पर गए, ड्यूटी से घर जाना होता है तो बुद्धि घर की तरफ चली जाती है ना, तो क्या क्या सामान घर लेकर जाना, तो ऐसे ही अब हमें अपने घर परम धाम जाना है तो क्या लेके जाना है, परम धाम जाना है तो क्या लेके जाना है हमें, नहीं परम धाम जाना है कुछ भी नहीं लेके जाना, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाना है, हिसाब बराबर करके जाना है, लेना देना बराबर करके जाना है, कुछ लेके कैसे जाएंगे, परम धाम जाना है, हमने कुछ भी जो यहाँ लिया दिया था वो सब वापस करके ही जाना है। घर जाने के लिए तो हर आत्मा को हिसाब बराबर करके जाना है, परम धाम याद करना माना हिसाब बराबर करके जाना है। कौन सी कमाई, सतयुगी कमाई कौन सी है ये बताओ मुझे, फिर मैं बताऊंगा कि क्या ले जाएंगे। सतयुग में भी हमारे कुछ भी साथ में जाने वाला नहीं है, जितने भी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जितना भी योग लगा रहे हैं, ये हमारे साथ नहीं जाना, योग लगा के जो हमने अपने संस्कार बना लिए वो संस्कार आत्मा के साथ जाएंगे, वो संस्कार आत्मा के साथ जाएंगे, बाकी कुछ नहीं। और संस्कार कौन से जाएंगे, जो लेके आए थे वही तो संस्कार जाएंगे, तो हम बराबर करके जा रहे हैं ना, तो हम परम धाम जा रहे हैं, मतलब जो मैंने अपनी आदतें बनाई थी वही आदतें मैं परम धाम से आया था तो लेके आया था, तो वही मैं लेके जाऊंगा, तो बराबर करके जाऊंगा ना, बराबर करके जाऊंगा ना, तो मतलब फिर ये पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं, हम जो बाबा की श्रीमत पर अपना चरित्र सुधार रहे हैं, उस चरित्र के अनुसार जो अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, वो संस्कार अच्छे संस्कार हमारे साथ जाएंगे, तो जब हम आएंगे तो उन अच्छे संस्कारों के साथ आएंगे, है नहीं? और जो गंदे संस्कारों को लेके जाएगा तो वो गंदे संस्कारों के साथ आएगा, इसलिए तो कहा अंत मति सो गति, मतलब अंत में जो तुम्हारे मत में होगा, जैसे तुम्हारे संस्कार होंगे वही तो तुम्हें मिलेंगे, है नहीं? अंत में हम जिन संस्कारों के साथ घर जाएंगे उन्हीं संस्कारों के साथ हम आएंगे, बाकी ऐसे नहीं कि अंत में हमने हिरण के बारे में सोचा तो हम जाके हिरण बन जाएंगे, गधे के बारे में सोचा तो गधा बन जाएंगे, ऐसा नहीं है, है नहीं? ये उन विचारों को समझ में नहीं आया कि अंत मति सो गति का मतलब क्या है। हाँ जी, धीरे धीरे रोजाना मुरली सुनते रहेंगे तो हमें धीरे धीरे बातें समझ में आते। जहाँ तुम अशरीरी रहते हो, परम धाम में तो तुम्हारा शरीर ही नहीं है, वहां ना कुछ खाना पीना पड़ता है, आराम से आत्मा पड़ी है जैसे पत्थर पड़े हो, कुछ भी हिलना डुलना बोलना नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है, यथार्थ रीति तीनों काल तीनों लोकों की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, 84 जन्मों का ज्ञान और कोई में हो नहीं सकता, तुम जानते हो हमको इस छीछी दुनिया से छीछी शरीर और से मुक्त होकर जाना है। हम जा रहे हैं, बाप रोज एक रेस सिखलाते हैं। तुम्हारी रेस अविनाशी है, बाप को जितना जास्ती याद करेंगे उतना तुम्हारा रजिस्टर में नाम अच्छा रहेगा। कहेंगे इनकी बुद्धि की यात्रा बहुत तीखी है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करते हैं तो विकर्म विनाश ना होने के कारण पिछाड़ी में रह जाते हैं, और फिर पीछे पिछाड़ी में रहने का मतलब क्या है? पीछे रह गए, पीछे रहने का मतलब है वहां पद कम पाएंगे, मीन्स प्रजा में चले जाएंगे, वहां जाकर दास दासियां नौकर चाकर जाके बन जाएंगे। वे अच्छी मेहनत करके जाएंगे तो वहां उच्च पद पा लेंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे, नौकर चाकर बन जाएंगे, दास दासियां बनना। बाकी ये कोई प्राइज नहीं है, तो कह रहे बाबू देखो ये कोई प्राइज सोना है भाई, यहां पढ़ने आ भी रहे हो फिर कम से कम जाके राजा तो बनो। ये क्या मतलब हुआ वहां जाके दास दासियां बने, फिर उनको पढ़ाई हुई? तो राजा बनने के लिए बाबा ने सबको टाइम तो बराबर दिया है ना, जो वहां राजा बनेगा, सौकार बनेगा, बड़ी प्रजा बनेगा, तो हर एक को टाइम तो बराबर है। अब टाइम का यूज तो हर एक आत्मा ने करना, किसी के लिए कोई दूसरी आत्मा तो कर नहीं सकती कि मैं किसी को पैसे दे दूं कि मेरे लिए तू कर दे, ये तो काम चलता नहीं। करना तो हर एक आत्मा को खुद ही पड़ेगा। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, इसको इनाम कहा जाता है। बाप राजाई का इनाम देते हैं, अगर उनको मत पर चल, मत उनकी मत पर चल दौड़ी लगाई तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सुधार कर लिया, धीरे धीरे फिर छोटा पद बनेगा। सुधारने में दौड़ लगानी है अपने आप को, जितना जल्दी जल्दी हम अपने आप को सुधारेंगे तो दौड़ लगा रहे हैं, धीरे धीरे सुधार रहे हैं तो अगर प्रजा वाले होंगे तो बिल्कुल कम दर्जा पा ले। यहां रहने वाले भी, मधुबन में रहने वाले भी, सीधी सी बात कर दी, यहां रहने वाले, ये मधुबन में रहने वाले भी होंगे तो भी राजाई में बहुत कम पड़ता है। ये नहीं कि मधुबन में रह रहे हैं तो हमारे जो है ना, ऐसा कुछ नहीं है। वहां रह करके भी आप देही अभिमानी रहे, आपने देही अभिमानी खुद को नहीं बनाया, अपने चरित्र को सुधारा नहीं, सेवा में तो लगे रहे परंतु सुधारा नहीं चरित्र को, तो क्या बनेंगे? देही अभिमानी रहकर अनेक आत्माओं के साथ हिसाब किताब बनाया नहीं तो क्या बनेंगे? बहुत कम पद पाएंगे। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि हुई है, तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि हुई है। आप बंगलोर मद्रास के बच्चे बैठे हैं, अब उस टाइम हिस्ट्री हॉल में बताओ थोड़े से आ गए वो भी, क्योंकि तो हर एक तरह भाई बन जाते हैं ना, उन्हों को फिर मद्रासी भाषा में कोई बैठ समझाए। अब कोई वहां पर ट्रांसलेटर तो उस टाइम थे नहीं, तो वहां से कोई ना कोई बहन या भाई उनके साथ आता था जो हिंदी में सुने और मद्रासी में उनको सुनाए, है नहीं? भाषा में कोई बैठ समझाए, हमारी भाषा तो हिंदी है, कल पहले भी ऐसे ही समझाया था, 5000 साल पहले भी ऐसे समझाया होगा। कहेंगे भगवान सब भाषाएं क्यों नहीं जानते? बाबा खुद जवाब दे रहे हैं, कहते हैं भगवान सब भाषाएं क्यों नहीं जानते, परंतु ड्रामा में है नहीं, ड्रामा में है नहीं। ड्रामा में होता तो मैं सब भाषाओं में भाषण करता। बाबा कहते भाई मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, ड्रामा में यदि होता तो मैं भी फिर सब भाषाओं में भाषण करता। समझो भिन्न भिन्न भाषाओं वाले बैठे हों तो क्या हम सब भाषाओं में बैठ बोलूंगा? क्या बोलूंगा? तो एक ही भाषा में ना, ये हो नहीं सकता कि मैं सब भाषाओं में बोलूं। एक दो को भी कहां तक सुनाएंगे? एक दो को, दो चार जने मद्रासी आ गए हैं, एक बहन वहां उनके झुंड में बैठ गई और बाबा ने जो कहा उनको अपनी भाषा में बोलती जा रही है। पहले तो यही होता था कि वहां की जो बहन होती थी लेके आती थी टीचर बहन, वही उनकी भाषा भी जानती थी, हिंदी भी जानती थी, फिर उनको यहाँ आकर के बाबा की मुरली उनकी भाषा में उनको बताती जाती थी। ये हो नहीं सकता, अब तो उनकी भाषाओं में जो मुरली प्रिंट होती है वो भारत की सारी भाषाओं में अब प्रिंट होती है, तो उनके पास उसी भाषा वाली पहुंच जाती है ताकि वो बहने पढ़ सके। यहाँ तो ये तो हो नहीं सकता, एक दो को भी कहां तक सुनाएंगे, घमसान हो जाए। अभी दो जो है ना कन्नड़ के बैठे हो, तो तमिल के बैठे हो, चार बंगाली बंगला के बैठे हो, तो उसके बैठे हो, अब वो उसके साथ बोले जाए वो क्या हो जाए, क्लास का घमसान हो जाए ना। तो समझाना चाहिए, बाबा ने कल पहले जिस भाषा में समझाया था उसी भाषा में ही समझाते हैं, इसलिए हिंदी का जोर है। अंग्रेजी भी जरूरी है क्योंकि इन्हों का कनेक्शन अंग्रेजों से जास्ती है, रशिया अमेरिका आदि की भाषा अपनी अपनी है, तो सब अंग्रेजी, पर तो रशिया की भाषा अंग्रेजी अलग है और अपने अमेरिका की भाषा अलग है, सबकी भाषा अलग अलग है। हाँ, इंग्लैंड की अंग्रेजी अलग है, अमेरिका की अलग है, रूस की अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है, सब जगह अंतर पाया जाता है। जैसे आप भारत के अंदर देख लो, आपकी हरियाणवी अलग है नहीं, मेवाती अलग है, ब्रज भाषा अलग है, तो हिंदी सारे है नहीं, तो थोड़ी थोड़ी देर पर, थोड़ी थोड़ी दूर पर 20 कोस पर भाषा में अंतर आ जाता है। रशिया अमेरिका आदि सबकी भाषा अपनी अपनी है, एक ही धर्म वाले हैं क्रिश्चियन ही, परंतु भाषाएं बहुत है, उनकी भाषाएं बहुत है। बाबा सब में क्या है, बाबा तो यहाँ आके पढ़ाता है हिंदी में, परंतु उसको उनकी भाषा में ट्रांसलेट करके दिया जाता है। ये बात, अभी कुछ दिन पहले ताज नहीं पहनाए थे, काले ताज, अच्छा काले ताज, काले ताज तो पहन रखे, मिल गए हैं ना, अव्यक्त मुरली में था हेडफोन, संडे की मुरली में था ना। जहां भी सब भारतवासी हैं, आदि सनातन, भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने धर्म को भूल गए, अपने धर्म को क्या है भूल गए। भाषाएं कितनी हो गई हैं, सब मिक्सचर है, जिसकी जो भाषा है उसमें फिर उनको सुनाना है। इनमें भी बड़ा होशियार चाहिए जो समझ कर और समझाए, साथी ऐसा होना चाहिए जो एक्यूरेट समझा सके, ये है सबसे बड़ा चैतन्य तीरथ। वे सब हैं जड़ तीरथ, दुनिया में जितने भी तीरथ हैं वो सब जड़ तीरथ है, पर तो एक यही तीरथ है जो चैतन्य। वे सब हैं जड़ तीरथ, साधु संत महात्मा सब वहां जाते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं, जो भारत को पावन बनाकर गए हैं उन्हों के मंदिर में जाते हैं। ये भी समझने की बातें है ना, बाप कहते हैं झाड़ की टालियां पत्ते उसका विस्तार कितना है, जो हमने झाड़ का चित्र बनाया है उसमें कितनी टालियां कितने पत्ते हैं। कितना विस्तार से उसको समझाएं, तुम तो समझ गए हो ये छोटे छोटे टालियां, टाली में भी एक टहनी में भी कितने पत्ते लगे हुए हैं, उससे भी ज्यादा धर्म। क्यों कितने दिखाएं यहां पर पत्ते, अथाह मठ पंथ है, गिनती नहीं कर सकते कितने मठ पंथ है। तुम्हारा थुर तो कितना बड़ा होना चाहिए, कितने पत्ते होने चाहिए, आदि सनातन देवी देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग से लेकर चला आया है, तो हिंदू कितने होंगे। परंतु हिंदू भी नहीं रहे हैं, और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। ये है कल्प वृक्ष, शुरू में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, हिंदू कहलाने वाले भी वास्तव में हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु कन्वर्ट हो गए ना, बदल गए ना। बाप कहते हैं मैं आकर फिर उस देवी देवता कहलाने वाले धर्म की स्थापना करता हूँ, जो कन्वर्ट हो गए हैं वही फिर से आकर वर्षा लेंगे, वही फिर से आकर क्या लेंगे, वर्षा लेंगे। जब देवी देवता कहलाने वाला एक भी नहीं रहता, कब आते हैं बाबा, जब देवी देवता धर्म कहलाने वाला एक भी नहीं रहता, तब ही बाप आते। फिर आकर क्या करते हैं, आकर समझाते हैं, तुम्हारे जड़ यादगार खड़े हैं, क्राइस्ट आते हैं तो उनके धर्म की चर्चा आदि होती नहीं, यहां तो अभी भी देवी देवताओं के मंदिर खड़े। तुम्हारा जब राज्य था, राज्य होगा तो क्राइस्ट आदि का नामो निशान नहीं होगा कहीं, यहां तो सभी का नाम निशान है। तुम जानते हो क्राइस्ट कब आया, क्रिश्चियन धर्म कब कैसे स्थापन हुआ, ये सब मालूम है। क्राइस्ट अब किस शरीर में होगा, जरूर पतित शरीर में ही होगा, खुद तो पावन था ना। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, तुमको दूरादेशी बनाया जाता है। हम आत्माएं कहां रहती हैं, हम आत्माएं कहां रहती हैं, कहां से आती हो, ये किसी को भी पता, किसी को पता ही नहीं कि रहने का स्थान परमात्मा मान लिया उन्होंने, परम धाम की बजाय जो परमात्मा का स्थान है वो मान लिया। वास्तव में आत्मा झूठी बनने से काया भी ये झूठी बन जाती है, साधु लोग कह देते हैं झूठी माया झूठी काया झूठा ये संसार। बाकी आत्मा तो निर्लयता कहते हैं, अपने मतलब की बात कह देते हैं, अपने मतलब की बात कह देते हैं। ऐसे क्यों नहीं कहते झूठी आत्मा, झूठी आत्मा की झूठी काया, आत्मा भी झूठी तो काया भी। आत्मा भी झूठी और काया भी, काया को ही काई पर, काई जानते अर्थी, अर्थी को काई भी कहते, काया को अर्थी पर काई पर बिठाते हैं, अब आत्मा को तो काई या अर्थी पर नहीं बिठाते, आत्मा को तो काई या अर्थी पर नहीं बिठाते। काई पर काया को बिठाया जाता है, आत्मा ने तो एक काया को छोड़ दूसरी काया में प्रवेश किया। ये समझ की बात है, कोई भी साधु संत आदि को तुम समझा सकते हो। यहाँ पतित दुनिया में कोई भी महात्मा नहीं है। महान आत्माओं को पावन आत्मा कहा जाता है। तो शरीर भी पावन चाहिए, ये है आयरन एज। परंतु कन्या जब तक विकार में नहीं गई है तो सब उसकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और सभी उसकी पूजा करते हैं, और जब विकारी बनती है तो वही सब के पांव पड़ती। पवित्रता के लिए ही सारे पुकारते हैं कि आकर के हमको पावन बनाओ, पवित्र बनाओ। जबकि पुकारते रहते हैं तो तुम उनको महान आत्मा कैसे मान सकते। जो पतित से पावन होने के लिए बुलाती रहे तो वो पावन आत्मा कैसे कह सकते। महात्मा तो कोई है नहीं, ये है विचित्र परमात्मा। ये कौन है जो मैं पढ़ा रहा है, विचित्र परमात्मा। विचित्र माना विशेष चित्र वाला। पता है मेरा चित्र है परंतु विशेष। तुम जानते हो हम जो पावन जीव आत्माएं देवी देवता थे अभी पतित बनी हुई हैं, धर्म भ्रष्ट हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को जानते हैं, झट कहेंगे हम क्रिश्चियन हैं। तुम ऊंच से ऊंच धर्म वाले अपने धर्म को भूल गए हो, भूल जाने से क्या बन गए हो, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हो। तुम श्रेष्ठाचारी थे, अब रावण ने भ्रष्टाचारी कर दिया है। ये अर्थ भी तुम समझ सकते हो। तुम बच्चे अभी अपनी भविष्य ऊंच तकदीर बनाने के लिए धारणा कर रहे हो। श्री मत का उल्लंघन करने से तकदीर को लकीर लग जाती है। ये भी भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं, कि श्री मत देने वाला बाप है। तो आखिर वो दिन आया आज, ये तुम जानते हो, सभी एक्यूरेट जानते हैं। अंत में जानेंगे जब पूरे समझ जाएंगे। अभी तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, मुश्किल कोई सच बतलाते हैं, झूठ बोलने में देरी नहीं करते हैं। माया अच्छे अच्छे रुस्तम बच्चों को थप्पड़ लगा देती है। थप्पड़ लगाकर क्या करती है, मुंह फेर देती है। कैसे मुंह फेरती है, फिर जाएगा ब्रह्मा कुमारी की तरफ, नहीं जाऊंगा, चल चल इधर उधर, ब्रह्मा कुमारी की तरफ मत जाना। अच्छी तरह थप्पड़ मार के मुंह फेर दे। दुनिया में भी बोलते हैं ऐसा, थप्पड़ लगाऊंगा मुंह फेर दूंगा। परंतु ये पता नहीं क्या करेंगे, ये तो पता ही नहीं था कि मुंह फेरने का मतलब क्या है। हाँ जी, बाप तो सब जानते हैं बतलाते हैं, तुम भूल करते हो, बड़ी डिसर्विस करते हो। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य स्थान नंबर एक, दूरादेशी बन, तीनों लोकों और तीनों कालों को जान, बुद्धि से रेस करनी है, इस छी-छी दुनिया छी-छी शरीर से मुक्त होना है, झूठ बोलने की आदत को मिटाना है, श्री मत का उल्लंघन कर इस सर्विस नहीं करनी है, वरदान लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव, लौकिक संबंधों में रहते हद के संबंध को ना देख आत्मा को देखो, हद के रिश्ते को मत देखो, आत्मा को देखो, आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या फिर रहम आएगा, इसको पता नहीं है इसको भी परमात्मा का परिचय दे। ये आत्मा विचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान है, मैं ज्ञानवान आत्मा हूं, तो उस अनजान आत्मा के प्रति अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी, अपनी वृत्ति और दृष्टि को बदलना ही अलौकिक जीवन है। जो काम अज्ञानी करते हैं वही आप ज्ञानी तो आत्मा नहीं कर सकते, आपके संग का रंग उन्हें लगना चाहिए ना कि उनका हमें लगे। स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम बाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।